23 अक्टूबर रविवार, दिनभर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संकट गहराया। मुख्यमंत्री ने शिवपाल और उनके करीबियों को मंत्रिमंडल से निकाला तो रामगोपाल यादव भी हुए पार्टी से बर्खास्त। समाजवादी पार्टी में मुलायम परिवार की ये आपसी रंजिश पर क्या कहते हैं लोग और क्या नतीजा होगा?
रामगोपाल कोई मतलब थोड़ा, उनको 3-4 साल पहले निकाल देना चाहिए था। इन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, इनकी वजह से पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदनाम हुई।
पार्टी में कोई ऐसा मतभेद नहीं है, नेताजी की बात सब लोग मानेंगे और हम लोग।
चर्चा होगी विस्तार से, सुनिएगा उस महिला की दास्तान भी जिसे जवाहरलाल नेहरू को माला पहनाने पर कर दिया गया समाज से बाहर।
उससे क्या बात होगा, हमारा मीटिंग हुआ बटन दबाया का कुछ नहीं बात।
खबरें होंगी क्रिकेट के मैदान से भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ समाजवादी परिवार का घमासान बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि रामगोपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी, नारद राय, शादाब फातिमा, ओम प्रकाश सिंह और गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। इराक से मिल रही खबरों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने पश्चिमी प्रांत अनबार के रुतबा कस्बे पर हमला किया है। इस हमले को मोसुल की लड़ाई से ध्यान हटाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रुतबा के मेयर का कहना है कि जिहादियों ने कस्बे में घुसकर हमला किया और सुरक्षा बलों के साथ उनकी जोरदार लड़ाई हुई। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब इराकी और कुर्द बल उत्तरी इराक में मोसुल पर दोबारा नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। मोसुल इराक में इस्लामिक स्टेट का अहम ठिकाना है। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि रूस की ओर से एक तरफा संघर्ष विराम खत्म करने के एक दिन बाद भीषण लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। रूस और सीरिया ने विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं। हवाई हमले की वजह से संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी को राहत बचाव कार्य में खासी दिक्कत आ रही है। एलेप्पो के एक स्थानीय व्यक्ति इस्माइल अल अब्दुल्ला ने बीबीसी को बताया, संघर्ष विराम खत्म होने के 3 घंटे बाद मैंने देखा कि बमबारी हो रही है। हमने रेडियो पर सुना कि लड़ाई में जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ये थे एलेप्पो में एक स्थानीय व्यक्ति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान में अफीम की पैदावार में पिछले साल 43% की बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान में अफीम उगाना एक अपराध है और ये तालिबान की कमाई का एक प्रमुख जरिया है। अफगानिस्तान की सरकार का दावा है कि वो अफीम की खेती के खिलाफ है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अधिकारी इसे खत्म करने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर अपनी चिंता जताई है। अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी AT&T ने घोषणा की है कि वो मनोरंजन समूह टाइम वार्नर को लगभग $86 अरब में खरीदेगा। ये इस साल के सबसे बड़े सौदों में से एक होगा, हालांकि इसे नियामकों से मंजूरी मिलना बाकी है। इस सौदे के बाद AT&T का दायरा और बढ़ जाएगा, जिसमें वार्नर ब्रदर्स फिल्म स्टूडियो, केबल टीवी चैनल HBO और CNN का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी शामिल होगा। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि वो अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप की बातों की परवाह करने के बजाय अब मुद्दों पर अधिक ध्यान देंगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद वे उन महिलाओं के खिलाफ मुकदमा करेंगे जिन्होंने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहा पारिवारिक विवाद ऐसा लगता है कि अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से जारी विवाद आज यादव परिवार के 2 अहम सदस्यों की बर्खास्तगी के रूप में सामने आया। अखिलेश यादव ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं, सुबह अपने चाचा और कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। वहीं दोपहर बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की पार्टी से बर्खास्तगी की सूचना दी। इस बीच सोमवार को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। फिलहाल ये विवाद कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
यूं तो ये तय था कि आज और कल के दौरान समाजवादी पार्टी में कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं, और ऐसा शुरू भी हो गया। पहले मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव समेत 6 मंत्रियों की बर्खास्तगी की खबर आई तो दोपहर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का फरमान शिवपाल यादव ने सुनाया।
मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदेश अनुसार प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए गए, पार्टी से भी हटाए गए और पार्टी से भी निष्कासित किए गए।
दरअसल आज तड़के 6 बजे ही राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने पार्टी के विधायकों को एक पत्र लिखा और अपील की कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में लामबंद हों, और इसके कुछ ही देर बाद विधायकों के साथ अखिलेश यादव की बैठक के बाद मंत्रियों की बर्खास्तगी का फरमान सुनाया गया। हालांकि राज्यपाल ने अभी सिर्फ 4 मंत्रियों शिवपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय और सैयदा शादाब फातिमा की ही बर्खास्तगी की सिफारिश को मंजूरी दी है। रामगोपाल यादव को बर्खास्त किए जाने के पीछे शिवपाल यादव ने ये वजह बताई।
प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। रामगोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एक पुत्र बधु यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। उन्हें यश एवं फल को बचाने के लिए भाजपा के सारे पर षड्यंत्र कर रहे हैं।
शिवपाल यादव का कहना था कि मुख्यमंत्री भी रामगोपाल यादव के झांसे में आकर कई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने सुबह अपने आवास पर पार्टी विधायकों के साथ बैठक की जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में अखिलेश यादव ने अमर सिंह पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, ये बात भी कही जा रही है कि इस बैठक का कोई खास मकसद नहीं था बल्कि अखिलेश यादव विधायकों के बीच अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। बहरहाल पार्टी में अभी कुछ और बड़े फैसले आने के कयास जारी हैं और इसके लिए लोग सोमवार को मुलायम सिंह यादव के साथ होने वाली विधायकों की बैठक पर नज़र लगाए हुए हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
तो समाजवादी पार्टी में जो घमासान चल रहा है वो काफ़ी तेज़ हो गया है इस वक्त, और जैसे ही आज दिन भर की ये जो हलचल रही उसके सामने आने के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी सिलसिला निकल पड़ा है। बीजेपी, कांग्रेस और खुद समाजवादी पार्टी के नेता अपनी तरफ से स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आइए सुनिए कुछ आवाज़ें। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य।
और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि 2017 अब देर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए। और पुनः मेरी यही मांग है कि अखिलेश यादव जी या तो इस्तीफा दें अथवा माननीय राज्यपाल महोदय इनके द्वारा कोई नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगाया जाए और जब तक ये बहुमत न साबित कर दें तब तक इस सरकार के द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लिए जाए, ऐसी व्यवस्था की।
आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की आवाज़ सुनी जो कह रहे थे कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शकील अहमद हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें किसी दूसरे दल के लिए तो कोई बात नहीं लेकिन सरकार का ध्यान शासन प्रशासन पर ना होकर पारिवारिक लड़ाई पर है इस वक्त।
किसी दूसरे राजनीतिक दल को कोई मतलब नहीं होना चाहिए मगर शासन और प्रशासन का ध्यान आपसी पारिवारिक लड़ाई की तरफ है और राज्य की जनता के हितों में नहीं है। उससे लोगों को चिंता होती है, उनका घर फूटता है टूटता है वो संभालें, मगर राज्य की जनता को उससे क्यों परेशान कर रहे हैं।
ये थे शकील अहमद जो कह रहे थे कि पारिवारिक लड़ाई का असर सरकार पर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी के नेता इस मौके पर ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर लोग सामने आए लेकिन उसके बाद से खामोशी है। हालांकि आज़म खान ने ज़रूर अपनी राय जताई है और कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका अंदाज़ा वरिष्ठ नेताओं को पहले से ही था।
मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो किसे अपनी कैबिनेट में रखेंगे किसे नहीं रखेंगे ये मेरे पसंद और नापसंदीदगी का सवाल नहीं।
अच्छा, अमर सिंह को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है, क्या मानते हैं
आप? नाम लेकर कह रहे हैं, हमने बगैर नाम लिए महसूस किया हमेशा कि ऐसा एक दिन आएगा जरूर, दुखद है बहुत। इसे जो समझदार लोग हैं पार्टी के, दूरदर्शी लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास था ये दिन आएगा।
तो ये थे आज़म खां जो कह रहे थे कि पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ये अंदाज़ा पहले से ही था कि इस तरह की घटना होगी या इस तरह का दिन पार्टी के भविष्य में आएगा जो कि आज आ गया है। तो आज इस कार्यक्रम में हम समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहे बिखराव पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र जो लगातार पिछले कई महीनों से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं। समीर हमारे साथ हैं, समीर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त लखनऊ में क्या हो रहा है?
जी निखिल, कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव के घर पर कुछ पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हो गई है फिलहाल, जिसमें शिवपाल यादव भी थे और उनके अखिलेश मंत्रिमंडल से जो उनके साथ निकाले गए कुछ मंत्री हैं वो शामिल थे और गायत्री प्रजापति भी शामिल थे। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की मौजूदगी बड़ी अहम मानी जा रही है उस बैठक में से। बैठक में निकल करके क्या आया, किस मुद्दे पर बुलाई गई थी, क्या चर्चा हुई, इसकी कोई जानकारी अभी तो नहीं मिली है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी आज दिन भर घटनाक्रम हुआ है निश्चित तौर पर इस पर बातचीत हुई है। इस बीच जैसा आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी में लोग अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और रामगोपाल यादव की बर्खास्तगी को लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल सामने आए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से रामगोपाल यादव का बचाव किया है।
जी समीर, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। हमारे साथ शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से, वो भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और अब हम चर्चा को विस्तार दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि समीर अभी बता रहे थे कि वहाँ एक पार्टी की अहम बैठक हुई है समाजवादी पार्टी के इस वक्त, लेकिन उसमें से क्या कुछ निकल करके आया है अभी पता नहीं चल पड़ा है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कुछ भी आज सामने आया है, जिसके कयास काफ़ी दिन से लग रहे थे, तो क्या अब वो निर्णायक मोड़ आ गया है समाजवादी पार्टी के जीवन में?
नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा स्कोप है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में ऐसा लगता है कि किसी तरीके की कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अखिलेश ने जितने भी एक्शन आज लिए, जो मंत्री निकाले, वो सब शिवपाल यादव के से उनकी घनिष्ठता है। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मुलायम सिंह यादव का खास आदमी हो, जैसे कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी, जिनके खिलाफ तमाम ढेर सारे करप्शन के चार्जेस है और जिनके खिलाफ अखिलेश बहुत बोल चुके हैं, एक बार निकाल चुके हैं फिर वापस रख चुके हैं, वो आज अखिलेश यादव से मिले और चर्चा उनकी चल रही थी और उनके साथ एक घंटा वो बैठे, लेकिन उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसी तरीके से कुछ ऐसे, जैसे अभी हाल में जो चीफ सेक्रेटरी थे स्टेट के, दीपक सिंगल, जिनको करप्शन बहुत, जिनकी बड़े करप्शन का बहुत उनके बारे में कहा जाता है, उस वजह से वो हटा दिए, अखिलेश के मर्जी के बगैर उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया था, फिर किस 2 महीने बाद अखिलेश ने उनको हटाया। कल रात को उनका अपॉइंटमेंट एक नई पोस्ट क्रिएट करके कमिश्नर ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन उनको बना दिया गया, जो कि पता लगता है कि अखिलेश की नॉलेज के बगैर करा लिया है, क्योंकि इस तरह के बहुत से आदेश मुलायम सिंह यादव डायरेक्टली करा लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर जो है अनिता सिंह, वो मुलायम सिंह के खास ऑफिसर हैं, उन्होंने उन्हीं की अपॉइंटी हैं, तो ये इस तरह की बैकसीट ड्राइविंग क्योंकि मुलायम सिंह यादव करते रहे थे, उन्होंने वो भी कराया, उसके खिलाफ भी अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। उसी तरीके से देखिए आप, मुलायम सिंह यादव ने भी सब कुछ किया, रामगोपाल यादव तक के खिलाफ एक्शन ले लिया, जो कि बहुत क्लोज है अखिलेश के, जो कि फ्रेंड फिलोसफर गाइड कहे जाते हैं अखिलेश यादव के, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश को इतना डिफायंट होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, तो ऐसा प्रतीत होता है एंड ये रूल आउट नहीं कर सकते कि दोनों बाप बेटे में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो और घूम फिर के जो है ये सॉफ्टर टारगेट ढूंढ करके ये बाहर कर दें और पार्टी को बचाने के लिए इनके पास ये तरीका भी यही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को ये चीज मालूम है कि इस वक्त अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करने से पार्टी के बुरी तरह बिखरने के ज्यादा चांसेस हैं बनस्पत किसी रामगोपाल यादव या अमर सिंह के। अब ये देखना है कि हम रामगोपाल यादव का बैलेंस आउट कैसे करते हैं, मुलायम सिंह यादव जो बैलेंसिंग एक्ट खेलते रहते हैं काफी दिनों से इस परिवार में, तो अब वो क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि अमर सिंह को वापस फिर से निकाल दिया जाए पार्टी से।
इस पूरे प्रकरण में जी, इस पूरे प्रकरण में अमर सिंह की क्या भूमिका देखते हैं आप?
देखिए, मुझे तो शुरू से शक रहा कि अमर सिंह ही इस पूरी फूट के का कारण है और उनका बैकग्राउंड भी कुछ इस प्रकार है कि जहां जहां वो जाते हैं वो फूट डलवाते, जब से और यहाँ पे एविडेंस भी है उस बात की कि जब से अमर सिंह वापस आए हैं पार्टी में तभी से ये फैमिली में खुराफात शुरू हुई है। और ये कहा जाता है पार्टी के अंदर वाले लोग ये तक बातें कर रहे हैं कि अमर सिंह की जो वापसी हुई है समाजवादी पार्टी में 6 साल के निष्कासन के बाद, उसमें क्योंकि सबको मालूम है कि शिवपाल यादव का बहुत रोल था और उनको वापस और कुछ इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अमर सिंह और शिवपाल में, उन्होंने उनको वादा किया कि तुम अगर मेरी वापसी कराते तो मैं तुम्हें किसी तरह मुख्यमंत्री बनवा दूंगा कुछ महीने के लिए जो बचे हुए हैं, और वहीं से शिवपाल यादव की जो महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की हुई वो लेकर के भतीजे से झगड़ा जो है वो बढ़ता गया, क्योंकि कोल्ड वॉर तो दोनों में थी शुरू से ही, जब से अखिलेश यादव बनाए गए थे, क्योंकि शिवपाल को लगता था कि ये अभी बच्चा है, कल का ये मेरे रहते हुए इतना सीन, उन्होंने सोचा था कि मुझे सक्सेशन मिलेगा, लेकिन जिस तरह परिवारों की जो परिवार की जो राजनीति हो उसमें जब बेटे और भाई में होता है तो बेटे को ही प्रेसिडेंस दी जाती है।
जी, जी।
उसी नजरिए से मैं कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे इस बात का शक है कि दोनों फाइनली बाप बेटे में कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगा, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला है ना कोई एक्शन लिया है।
जी तो शरद जी, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार अपने जो श्रोता हैं उनको याद दिला दूं कि जो समाजवादी पार्टी का जो ये पूरा विवाद था वो कहां से शुरू हुआ और आज कहां तक पहुंचा है, एक टाइमलाइन है इसकी, कब ये शुरू हुई और कहां तक पहुंची है, इस पर पूरे ब्यौरे के साथ अमर शर्मा।
सर्द हवाओं से मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक ने राजनीतिक फिजा में गर्माहट पैदा कर दी है। सत्ताधारी यादव परिवार में रिश्तों को किसकी नजर लगी और वो कौन सी चिंगारी थी जिसने धीरे धीरे मतभेदों को सुलगाया। देखा जाए तो विवाद तब शुरू होता है जब शिवपाल यादव ने ऐलान किया कि यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय होगा। अखिलेश ने इसका पुरजोर विरोध किया और तब यह विलय टल गया था। इसके कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव ने दो मंत्रियों गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को मंत्रिमंडल से हटा दिया। ये दोनों मुलायम और शिवपाल के करीबी थे। इसके बाद अखिलेश ने शिवपाल के करीबी माने जाने वाले दीपक सिंघल को हटाकर राहुल भटनागर को मुख्य सचिव बना दिया। भ्रष्टाचार के कई मामलों में जांच का सामना कर रहे दीपक सिंघल को अखिलेश यादव प्रदेश का सबसे बड़ा नौकरशाह बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन मुलायम और शिवपाल के दबाव में मुख्य सचिव बनाया था। राज्य में बड़ा जनाधार रखने वाले शिवपाल को मुख्यमंत्री का यह फैसला बेहद नागवार गुजरा। हालांकि पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह ने शिवपाल को मनाने की कोशिशों के तहत उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले यह पद अखिलेश के पास था। इसके बाद अखिलेश भी शांत नहीं बैठे और उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव से सारे अहम मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग छीन लिए। शिवपाल के पास तब कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले भूमि विकास, जल संसाधन और समाज कल्याण विभाग रह गए थे। हालांकि सपा प्रमुख मुलायम सिंह पार्टी में बन गए दो धड़ों में बीच बचाव को आगे आए और उनकी दखल के बाद अखिलेश ने अपने चाचा से छीने मंत्रालयों में पीडब्ल्यूडी छोड़कर बाकी उन्हें लौटा दिया। इसके साथ ही गायत्री प्रजापति की भी मंत्रिमंडल में वापसी हो गई। तब ऐसा लगा कि ये विवाद खत्म हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने राम गोपाल यादव के भांजे और विधान परिषद सदस्य अरविंद प्रताप यादव सहित सीएम अखिलेश यादव के साथ करीबियों को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटे, जिसमें उन्होंने मधुमिता हत्या मामले में सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे और हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दे दिया। इससे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नाराज दिखे और कहा कि वो इस फैसले से वाकिफ नहीं है। वहीं इस बीच कौमी एकता दल का भी सपा में विलय हो गया, जो कि पिछली बार अखिलेश के विरोध की वजह से रद्द कर दिया गया था। इस विलय से ये संदेश गया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में कितनी चलती है। पारिवारिक कलह की वजह से समाजवादी पार्टी का चुनावी अभियान भी शुरू नहीं हो सका, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वो खुद चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। 5 नवंबर को सपा ने पार्टी की रजत जयंती मनाने का ऐलान किया, तो इस बीच अखिलेश ने 3 नवंबर से ही अपनी समाजवादी विकास रथ यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी। वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक हुई, जिसके बाद शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ 4 और मंत्रियों अंबिका चौधरी, नारद राय, शादाब फातिमा, ओम प्रकाश सिंह और गायत्री प्रजापति को भी मंत्रिमंडल से निकाला गया। और इसके ठीक बाद शिवपाल यादव ने ऐलान किया कि पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव को पार्टी के सभी पदों और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है।
तो ये था वो पूरा घटनाक्रम जो समाजवादी पार्टी के अंदर विवाद जो शुरू हुए और फिर वो आज के जो पड़ाव है वहां तक जो पहुंचा है उसका ब्यौरा। हमारे साथ लखनऊ से शरद प्रधान हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही समीर आत्मज मिश्र। शरद, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद से अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है और बार बार ये जिक्र भी आ रहा है कि इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं जो उनकी दूसरी पत्नी हैं उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है या उनको लेकर के जो उनके हित हैं उनको लेकर के भी जो टकराव है उसकी भी भूमिका हो सकती है। आप क्या कहते हैं?
नहीं, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी को अपने बेटे की प्रतीक की पॉलिटिकल फ्यूचर की बड़ी फिकर हो गई है जब से अखिलेश चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उनको लगता रहा कि जो है उनको ठीक है, लड़के को दौलत बहुत मिल गई, तमाम हजारों करोड़ के बिजनेस एस्टैब्लिश हो गए एकदम ओवरनाइट, लेकिन जब तक पॉलिटिकल फ्यूचर उसका सिक्योर ना कर पाए तब से उनको लगने लगा। तो महत्वाकांक्षा उनकी भी है कि लड़के को, और अखिलेश ने हमेशा उसको सिस्टमैटिकली रोकने का कोशिश करी है और रोकते रहे हैं, और वो नहीं तो उनकी पत्नी इनके यानी कि उनकी बहू, तो वो सारा पूरा एक ग्रुप, पूरा एक गिरोह बन गया है जो अखिलेश के खिलाफ है
जी।
तो उसमें 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 अमर सिंह और जुड़ जाते हैं आकर के, जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं कि वही मास्टरमाइंडिंग पूरी वही कर रहे हैं। आज वो लखनऊ में नहीं है, लेकिन आज के भी जो खेल जितने हो रहे हैं, जो एंटी अखिलेश चल रहा है, वो सारा उन्हीं का डिजाइन किया हुआ है। और इनकी वाइफ मुलायम सिंह की वाइफ जो साधना है, उनका इंटरेस्ट अपने लड़के और बहू और उन अपने परिवार तक सीमित है। साथ में एक बहुत पावरफुल आईएएस ऑफिसर है अनीता सिंह, जो अखिलेश यादव की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, लेकिन अखिलेश यादव की मर्जी के बगैर वहां पे है, वो मुलायम सिंह की अपॉइंटी है। वो उनका भी बहुत रोल कहा जाता है क्योंकि वो भी बहुत एंटी चीफ मिनिस्टर हैं, और ये बड़ी विडंबना है, बट ये हकीकत है यहाँ की यूपी की।
जी जी शरद, ये सब जो
रामगोपाल, ये और उसमें शिवपाल यादव, अमर सिंह, साधना, अनीता सिंह, ये पूरी एक लॉबी है जो अखिलेश यादव के खिलाफ काम करती है। तो अखिलेश यादव ने जब इसके खिलाफ जब आवाज उठाई कि इनफ इज इनफ, जब उन्होंने कहने की, उनको लगा कि अब तो टेन्योर भी खत्म हो रहा है। शुरू में वो बर्दाश्त करते रहे, इनको गलती इनकी यही रही है कि उन्होंने पहले आवाज नहीं उठाई। अब मजबूरी थी लास्ट में कि अगर अब आवाज नहीं उठाते तो अखिलेश यादव लीडर नहीं बन पाते। देखिए एक चीज बड़ी स्पष्ट है, अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर जरूर बन गए थे लेकिन लीडर नहीं बन पाए, क्योंकि उनके ऊपर हावी थे उनके पिता, उनके चाचा, उनके चाची।
तो आप समझ रहे हैं कि ये इस पूरे घटनाक्रम से अखिलेश को लीडर बनने का मौका मिला है। बहुत शुक्रिया शरद प्रधान इस पूरी चर्चा के लिए, और मैं आपको फिर सुनाता हूँ कुछ कार्यकर्ताओं की आवाज़, क्योंकि नेताओं की बात तो सब सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे एक बड़ी मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है कार्यकर्ताओं के सामने कि वो किसके साथ जाएं। कुछ मुख्यमंत्री के खेमे के साथ हैं तो कुछ शिवपाल यादव के साथ, और कुछ लोग निराश हैं तो कुछ को उम्मीद है कि मुलायम सिंह एक बार फिर सबको साथ ले आएंगे। समीर आत्मज मिश्र ने बात की है कुछ लोगों से, आइए सुनते हैं।
विक्रमादित्य मार्ग पर ये समाजवादी पार्टी का लखनऊ में ऑफिस है, दफ्तर है, और अभी कुछ देर पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को निकालने की कार्रवाई हुई है। दफ्तर के बाहर हमारे साथ पार्टी के कुछ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या, मैडम आपका नाम?
नीलम रोमिला सिंह, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार।
ये जो चल रहा है पार्टी में पिछले दिनों से, और ये कार्रवाई जो दोनों तरफ से चल रही है, इसका पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का असर है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं, छोटे लोग हैं, जो इनका आपस पारिवारिक का है उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ मिशन 2017 पे हमारी नज़र है, हम उसके लिए हम लोग कहने गए थे। अब आप लोगों की बहुत बात हो गई, हम कार्यकर्ताओं को भी सुने।
तो लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की ये बात पार्टी के ऊपरी लेवल पे नेताओं द्वारा सुनी?
हाँ, मैं समझती हूँ कि माननीय नेता जी हमारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो निर्णय लेंगे वो समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को मान्य होगा।
आप लोग भी कार्यकर्ता हैं क्या? ये जो पार्टी के अंदर जो चल रहा है, हाँ, आज कोई निकाला जा रहा है, शाम को कोई निकाला जा रहा है, दोपहर को कोई निकाला जा रहा है, आप लोग आम कार्यकर्ता हैं, आपके मनोदशा पे इसका क्या असर है आने वाले दिनों में?
हिंदुस्तान के सबसे बड़े समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं, जब तक नेता जी हैं तब तक हम लोगों की कोई टेंशन नहीं, कोई सोचना नहीं है। नेता जी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद।
तो ये कुछ कार्यकर्ताओं की आवाज़ें आपने सुनी, और कुछ और भी कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ हम आपको अपने अगले कार्यक्रम में सुनाएंगे घटनाचक्र में। तो ये पूरा जो चर्चा है, ये जो पूरी बातचीत है, वो हम अगले कार्यक्रम में भी जारी रखेंगे। फिलहाल रुख दूसरी खबर का करते हैं। पंडित नेहरू से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन बुधनी मजियाइन के बारे में शायद ही सुना हो। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माला पहनाने के कारण आदिवासियों ने बुधनी को उनकी पत्नी करार देकर समाज और गाँव से बाहर निकाल दिया था। उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है, सुनिए रवि प्रकाश से।
नेहरू जी से आपकी क्या बातचीत हुई थी?
उससे क्या बात होगा, हमारा मीटिंग हुआ बोटम दबार का, कुछ नहीं बात भी क्या।
तो लोग कहते हैं कि आप नेहरू जी की पत्नी होगी, आदिवासी पत्नी।
हाँ वही तो बात है, उसीलिए है, सुन लो, उसीलिए इतना ध्रुव हुआ था। पहले का आदमी नहीं ना जानते थे है जे का होने से का होगा, और हम भी इतना बुद्धि नहीं था, बुद्धि रहने से तो हम भी करता नहीं करता। तो हमको सब साहेब शिवा बाबू भैया खड़ा कर दिया, कुछ नहीं होगा तो मकान बना देगा, सब फैमिली सब ले के आओ यहाँ पर, काम धंधा देगा, मकान कर देगा। तो कहाँ मकान भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हाँ सुन लो, कुछ नहीं हुआ।
आप बोधनी मंजैन को सुन रहे थे, वही बोधनी जिन्हें संथाली समाज पंडित नेहरू की पत्नी के तौर पर जानता है। यह अलग बात है कि पंडित नेहरू से उनकी सिर्फ एक मुलाकात हुई, वह भी चंद घंटों के लिए। वह तारीख 6 दिसंबर थी, साल 1959, दिन रविवार। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचेत आए थे। पंचेत अविभाजित बिहार के धनबाद जिले का हिस्सा था। यहाँ DVC ने पावर प्लांट के लिए डैम बनवाया था। पंडित नेहरू इसी के उद्घाटन के लिए यहाँ आए थे। तब बोधनी ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। नेहरू को माला पहनाया गया, उनकी आरती उतारी गई। जब बात उद्घाटन की आई तो नेहरू ने इसके लिए बोधनी को आमंत्रित किया। वे चाहते थे कि डैम के निर्माण में लगा मजदूर ही इसका उद्घाटन करे। सो प्रधानमंत्री नेहरू की मौजूदगी में बोधनी ने बटन दबाकर पंचवे डैम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वे सुर्खियों में आ गईं। कलकत्ता से छपने वाले आनंद बाजार पत्रिका व स्टेट्समैन समेत तमाम अखबारों ने यह खबर पहले पन्ने की लीड बनाई, लेकिन बोधनी के हिस्से की रोशनी सिर्फ इस समारोह तक ही सीमित थी। शाम ढलने तक उनकी बाकी जिंदगी के लिए स्याह अंधेरे की पटकथा लिखी जा चुकी थी। आदिवासी मामलों के शोधार्थी अश्विनी पंकज ने BBC को बताया कि उस समारोह के बाद संथाली आदिवासियों ने बैठक कर बोधनी को समाज से बाहर निकाल दिया। संथालियों का तर्क था कि पंडित नेहरू को माला पहनाने के कारण वे अनजाने में ही सही लेकिन उनकी पत्नी बन चुकी हैं। अश्विनी पंकज ने बताया,
उसके कई गवाह हैं क्योंकि वो सार्वजनिक आयोजन हुआ था ना, ठीक है, तो लोग भी देखने वाले सार्वजनिक थे। बोधनी अब उसको एक अभ्यास की तरह लेती है ना, कलम की तरह लेती है। मिला के ये है कि अगर उसके खिलाफ सोशल एक्शन हुआ तो उसके ठोस आधार रहे होंगे।
पंचेत डैम के उद्घाटन के साथ ही बोधनी मंजैन भारत की वैसी पहली मजदूर बन चुकी थी जिनके हाथों किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कराया गया। इस कहानी को आजाद भारत के नवनिर्माण के उदाहरण के तौर पर इतिहास के पन्नों में प्रतिष्ठित जगह मिली है। लेकिन इसी समारोह की एक और कहानी सिर्फ पंचेत कस्बे में दबकर रह गई। मैं इसी कहानी की तलाश में पहले पुरुलिया फिर पंचेत पहुँचा था। यह मेरी मुलाकात बोधनी मंजैन से हुई। उन्होंने BBC को बताया कि मैंने नेहरू जी को माला नहीं पहनाई, मैंने सिर्फ उनसे हाथ मिलाया था।
कुछ नहीं, वो जो हाथ मिलाया था उसी लिए जाते से हम बाहर हो गए, यही बात है और कुछ नहीं है।
तो आपने हाथ मिलाया था और माला पहनाया था?
हाँ, माला भी नहीं पहनाया, हाथ में रखा था। यही मैं बहुत कलंक कर रही हूँ।
इस घटना के 4 साल बाद 1962 में DVC ने बोधनी को नौकरी से निकाल दिया, वे बेरोजगार हो गई। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और पंडित नेहरू के नवासे राजीव गांधी ने बोधनी की खोज करवाई तो उन्हें इनकी बेरोजगारी का पता चला। वे नेहरू से जुड़े प्रसंगों के रिसर्च के दौरान बोधनी के बारे में जान सके थे। बोधनी मंजैन ने बताया कि राजीव गांधी के बुलावे पर वे उनसे मिलने भिलाई गईं। इसके बाद DVC ने उन्हें फिर से नौकरी पर रख ली। राजीव गांधी ने इसकी पहल की थी, अब वे रिटायर हो चुके।
तो आप राजीव गांधी जी से मिलने दिल्ली गई थी?
दिल्ली नहीं गया था, भिलाई गया था।
तो भिलाई में राजीव गांधी जी ने क्या कहा?
कुछ नहीं, इतना आदमी पास का बोलेगा हा? आदमी कम रहता है मीटिंग में।
तो ये थी बोधनी मंजैन, इनकी ये रिपोर्ट अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो कल सुबह सुन सकते हैं नमस्कार भारत में। और आइए अब सुन लेते हैं खेल समाचार। खेल समाचारों के साथ आदेश कुमार गुप्ता आ चुके हैं, क्या हो रहा है क्रिकेट के मैदान में आदेश जी?
जी देखिए, मोहाली में ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी अपना पुराना जलवा दिखा रहे हैं। आज बहुत लंबे अरसे बाद खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसकी बदौलत अभी उनका स्कोर है अपना व्यक्तिगत 70, दूसरे छोर पर 69 रन बनाकर खेल रहे हैं विराट कोहली। और थोड़ी देर पहले 31वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 163 रन था, जबकि भारत के सामने जीत के लिए 286 रनों का लक्ष्य है। इससे पहले आज न्यूजीलैंड ने 49.4 ओवर में 285 रन बनाए। एक समय तो न्यूजीलैंड के 8 विकेट 199 रन पर गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद जेम्स निशान और मैट हेनरी के बीच 84 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन उसके बाद आज जैसे ही भारत के 2 विकेट गिरे, धोनी ने अपना बल्ला संभाला, विकेट पर आए और उसके बाद कट, पुल, हुक और हेलीकॉप्टर शॉट सब कुछ देखने को मिल रहा है, लाजवाब कर दिया धोनी ने। मैच का नतीजा चाहे जो भी हो,
आज का दिन धोनी का है। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबरों के लिए। और अब चूंकि वक्त बचा नहीं है तो समाचार अगले कार्यक्रम में सुन लेंगे। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।